अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में गायें गायब हो रही हैं। अब तक हजारों गायें गायब हो चुकी हैं। गायब गाय का रहस्य अब तक अनसुलझा है।
Hello and welcome to this, the fourth episode of the Fourth Seat Podcast. Really momentous occasion. This is the only time we'll get to say that, fourth episode of the Fourth Seat. So as always, we, it's the fourth essentially because we split the others into...
Oh, right. Absolutely.
Yeah. So as always, we have our in-house panel of experts. We have the Mahesh Bhatt and the Suhail Seth of the Fourth Seat Podcast, Mayuk and Rahul.
I'm Mahesh Bhatt, I guess.
That's because Suhail Seth got involved in some unpleasant business, is it?
I guess Mahesh Bhatt has a lot of controversy upon himself as well. But he used to make good movies at one time, like Aashiqui.
So Rahul, you get Suhail Seth by default.
Yeah, I mean, I associate more with Suhail Seth because I have an MBA degree. So I think faffing comes quite naturally to me in that sense. And that way, I think association with Suhail Seth is quite natural. And I was having a really hard time keeping a straight face and not laughing into the mic because the intro music was pretty hilarious, in my opinion.
Yeah, I think that was from some news channel, right?
India TV.
Okay.
So welcome, guys. So before we get to this week's topic, which is mostly garbage, as you would know by now, it's already become a lot of garbage. So we'd like to address the elephant in the room. So we have a listener from the future who seems to have time traveled and asked us this question. What's the story behind our name, the Fourth Seat? Mayuk, would you like to go first on this?
I think the name basically comes from the word fourth seat, which is especially used only in Mumbai locals. Right. So basically Mumbai local trains have seats for three people, but they are big seats for three people. Usually when the train gets crowded, which is almost every time, you can actually squeeze in and let the fourth person sit at the edge, which is called the fourth seat. In our case, we are the three people who are already sitting on the three available seats, and the fourth seat is reserved for the listener. So that's the good way or the philosophical way of looking at it. But I also have a funnier way of looking at it. It's like I sometimes wish there was no fourth seat available. Sometimes I wish there was no person coming and asking me to squeeze inside. So it's like a humorous take on what happens on Mumbai locals and in life in general.
So Rahul, do you think you have a less metaphorical explanation of the fourth seat?
Not really. I mean, it's for one other way that I thought we could look at it is when it was in the 90s when we were kids. I remember a lot of our fathers used to have scooters, the Bajaj scooters, Chetak and all of that. So it used to be the father who was driving. The youngest child would be standing in front of him on that open area. Then there would be the second child or the elder child who would be sitting in sandwiched in between the mother and the father. And the mother would sit at the end. And it was typically a family of four that would constitute a unit which used to go out and go do their shopping, or they used to go out and travel. So I see this as that something equally, close in terms of the experience, and that we are all on a journey as a unit. So it's the three of us, Adi, Mayuk and myself, and the listener. So the four of us are on a journey trying to explore life. So that is what I would like to say.
That's a good way of thinking of it, right? Yeah.
And sadly, because it's a less interactive format, the listener never gets to pitch in live. So which is why he is the fourth seat. And the fourth seat is essentially not a seat. It's like Mumbai locals' version of the Schrodinger's cat. Like your ass is in the air and on the seat at the very same time, right? So I think if Schrodinger, I think, got his inspiration from the fourth seat, some level.
Yeah. Yeah, but then, I mean, before I forget, let me point it out that listeners can contribute, because we have an email ID, which is thefourthseatpodcast@gmail.com. I think we'll be listing it out on our show notes, and our Twitter handle is @seatfourth. So if listeners want to contribute something, tweet or email us, and we'll make sure your voice is heard.
Sure. So the other idea is, like, the fourth seat also is very irritating, because then you will have a lot of these guys who are standing in between those two sets of seats, and they'll try and shove you the other side. So if the window seat is Mukesh Ambani, the fourth seat is Anil Ambani.
The people who are sitting in standing in between the two seats are basically the ones who are waitlisted for the fourth seat.
They have aspirations, like, and sadly their aspirations are to get a seat within that 20 minutes of the travel, and such is life.
You very funnily pointed out that the first segment is garbage. It is also possible that whatever we are talking about, the history behind the name is actually garbage. Perhaps we could not come up with a better name.
That's, I think, probably the better explanation of why we chose this name, is it?
A more honest explanation.
Yeah.
And talking of Mumbai locals, another thing which you would very frequently encounter in these Mumbai locals is people coming up with random stories, right? And especially if you're traveling in the same compartment repeatedly over a period of time, you get to know how much of nonsense these people can cook up in that 1 hour or 40 minutes of your travel. Like, every single day you would have these people coming up with stories on and their opinions on politics, some incorrect fact about the world around them, and a lot of times we have all fallen for this crap. So,
and I mean, you even have solutions for the most complex problems, and it's very, very simple and non-controversial in that sense. They're like, yeah, just why don't you do this small thing, and, you know, there'll be world peace.
Like, so, nuclear warfare. So they have solutions like, go for nuclear warfare. That's what they would advocate most times.
अरे है ना हम लोग के पास मिसाइल है ना इजराइल तक जाता है हम लोग का मिसाइल.
अरे और इजराइल के बारे में उन लोगों को जितना जानकारी है वो शायद मतलब कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास नहीं होगा. मतलब वो लोग को इजराइल का सारा डिफेंस सीक्रेट से लेके उन लोगों का सारा डिफेंस स्टैटिस्टिक्स तक सब ये लोग के पास होता है.
यू नो समटाइम्स व्हाट आई फील इज these people, see, because they are meeting some people on the train only for some time, right? Half an hour, 45 minutes and 1 hour max. So they try out garbage, you know, it's like a comedian trying out bits and pieces of their set. So they try out nonsense, or colloquially in Mumbai, what we call as goli. And they are seeing which works and which does not. The things that work, they'll go and talk about it with their family members or other friends. So sometimes I feel it's just a trial round to see, you know, what I can like easily lie about or spin a yarn around.
But I mean, the thing is that we have to also evaluate, why is it that they do that? Is it because they lack conversation skills? Is it because they are ostracized by their own family? Is it because they have been single for way too long? Why is it that they
Being single for way too long is a very good explanation. probably the number one. But then it comes from the inherent need for a person to feel important or wanted. Mm-hmm. It is possible that at their college or school or workplace, no one valued them that much, you know. And here you have, you are sitting with people with whom you travel every day, or maybe complete random strangers. They don't know your background that well. They don't know what you're doing at work, how well you are treated or not. For them, you are just a fellow passenger and you can just talk. You know, it's like the public radio for each other.
And there is nothing to lose, right, for them. Like, even if people judge him or her, I don't think it matters to you at the end of the day. I think that is why there's this sense of comfort in that.
And there's no accountability. It's like a one-night stand, you know, where you just go and do your thing and you leave. It's not like you have to tend to that over time. So, I mean, say what you like.
Exactly. And then, but then metaphorically, we are coming back a whole circle about why this podcast is called Fourth Seat. Because if this was actually a Mumbai local, then perhaps we are talking garbage and people, our listeners may not take us seriously, which is fine with me.
Yes. So that brings us to the fact that we about something which is the agenda for the day and the topic for today, which is the origin of urban legends and the urban legends that we have all encountered growing up. Right.
There are so many of them. Right.
And I think this is going to be quite a engaging discussion because there's just too many myths that we can talk about, and it will be quite quick. And there's a lot of variation. There's a lot of things that you can pick and choose from. So if you're listening to this as a future listener, I should tell you this is going to be quite an interesting journey. So stay with us.
Welcome back, guys. It was a great fake break. It was fake because we don't have any sponsorships, but we are still taking breaks just to pretend that we are doing a great job.
So, and I would like to thank our sponsors here, Sharda Chit Fund.
that was good. That was good. So, you know, one thing that has been really bothering me nowadays is, but not exactly nowadays, since the last few years, is the advent of fake news, not just in India, but also in US and perhaps throughout the world, especially with the consumption of social media. You are seeing things on your phone that is very difficult to verify. And it has been affecting not just our daily lives, but perhaps businesses, economy, and even politics and elections. We don't know. So eventually, when we feel like doing, in the future, we might do a detailed analysis of these fake news. Let's just go back to simpler times when we did not have social media and fake news of this magnitude. But there were some news that affected us, I would say, emotionally and mentally, which were actually fake, but there was a fun element to it, right? So one of the things that I can remember was while growing up, especially if you were in the Mumbai suburbs, and this is very specific to Maharashtra and Mumbai, I guess, I heard that there is some Ganpati somewhere drinking milk, right? So what better way to start this podcast by talking about Ganpati Bappa?
Yes.
Moria.
And actually, this was a phenomenon. It was a lot less to do with one specific temple or deity. It had a lot to do with the idea that a Ganesh statue is drinking milk. And what used to happen is that you basically take a spoon which contains a bowl of milk or something, and then you basically tilt it towards the lip of the idol. Mm-hmm. And the angle in which you tilt it, it would be like the milk is running out of the spoon, and somehow that led to a wildfire sale of ridiculous amounts of milk. And the reality or the science behind it is that once you tilted the spoon, it used to kind of drip onto the body and then it would eventually go into the drain. So you had people hungry kids who were begging on the outside the temple premises or food, and then you had these gutters and nali jo hota hai usme doodh beh raha hai pani ki jagah pe. And I think the rationalists, a lot of them, I think, committed suicide that day because this was just too much to handle for them. Yeah, I think I sided with them on this.
लाइन में खड़ा था इसके लिए मैं गणपति को दूध देने के लिए मेरे घर में मैं लाइन में खड़ा था मेरा
So this was a weekday.
Yeah, it's a definite weekday. Evening में मैं स्कूल से वापस आया. I very distinctly remember.
Okay, okay.
घर में बोला गणपति दूध पी रहा है अभी घर के बाजू में एक मंदिर है अभी छोटा वाला ठीक है one of those outpost type मंदिर होता है ना then you have this main गणेश मंदिर और फिर बाहर एक जैसा स्टेशन के सामने ऐसा छोटा सा एक गणपति रखा है रास्ते पे और उधर खड़ा है 100 लोग खड़ा है साथ में ऐसा दूध अपना ग्लास में रख के और मेरा आगे वाला बहुत डेफिनेटली बोल रहा है पी रहा है
एक रश था उन लोग में अरे अरे जल्दी करो यार तुम क्या कर रहे हो ऐसा एक टाइप था एंड पैनिक एवरीवेयर बिकॉज दूध का स्टॉक खत्म पब्लिक को कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा है बट सब लोग लाइन में दूध के ये वो कलश के साथ वेट कर रहा है अरे गणपति दूध पी रहे करके
और उसमें भी क्या हम लोगों का बड़ा गणपति मंदिर में बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ हो गया था और वो छोटा वाले में क्या है थोड़ा कम पब्लिक था वो आगे वाला बोल रहा है अरे उधर जाना मांगता था वहां गणपति डेफिनेटली पिएगा ये क्या ये छोटा है ना मूर्ति इसके लिए ज्यादा नहीं लेता है यहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंट है मालूम नहीं मतलब दोनों में से एक प्रॉब्लम था गणपति
का एंड आई थिंक सी the inherent nature of humans is to do something with an agenda or with the idea of seeking some benefit or gain. एक बात बता अगर गणपति सबसे दूध पी रहा है तो फिर तेरे को मिल रहा क्या इन रिटर्न मेरे को वो बता
अरे वो दूध पिया भी क्यों रिटर्न में उसको क्या है कि वो दूध पिया मतलब वो मेरे को मेरे से फेवर लिया है तो मेरे लिए कल कुछ करेगा आई थिंक वो माइंडसेट है और उसमें दूसरा एक प्रॉब्लम क्या मालूम है बड़ा गणपति ज्यादा पिएगा ऐसा भी कुछ उसमें ऐसा कोई स्केलिंग रिलेशनशिप नहीं है कि वो बड़ा मूर्ति है ज्यादा गणपति वो दूध पिएगा और क्या गणपति क्या बोर हो गया क्या इतना साल मतलब अरे तुम लोग मेरे को सामने प्रसाद दिखा के खुद खा लेता है आज मैं बदला लेगा
आज इसके बाद वही
आज दूध मैं
दूध का दूध और पानी का
ऐसा करके
एंड समहाउ अगर गणपति पिया नहीं ना गलती से तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन यू और अगर तू 10th स्टैंडर्ड में और गणपति तेरे हाथ से मुंह दूध नहीं पिया ना
मतलब
बस तू थोड़ा भी तैयारी कर ले तू
सो एग्जैक्टली सो डू पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस डिड दे एवर गो बैक एंड एनालाइज की एक्चुअली हुआ क्या मतलब कुछ मिला क्या
वैसा तो नहीं किया बट मैं दूसरा एक वहां पे भी ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चनिंग नेचर था तो घर में आके पूछा कि घर का गणपति क्यों नहीं पी रहा है दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन आई पोस्ट मैं घर का मूर्ति के पास लेके गया बाय द वे टू मतलब मिथ तोड़ने के लिए डीबंक द मिथ वो गणपति दूध पिया नहीं मैं गया था वो मंदिर में वो पिया नहीं दूध एसेंशियली
बट आदि आई हैव एन एक्सप्लेनेशन तेरा घर पे गणपति पिया क्यों नहीं बिकॉज़ यू आर अ वैष्णव इतने तो गणपति आइडल
भी नहीं है तो वो उसको लगा कि ये लोग ऐसा ऑलरेडी ये लोग ट्रेटर लोग है ये लोग नहीं पिएगा
एंड आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैं भी एक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं फॉर्चुनेटली आई थिंक घर पे भी पब्लिक थोड़ा दे आर वेरी स्केप्टिकल बिकॉज इट कम्स अक्रॉस एज वेरी ऑड एंड वियर्ड टू इवन डू समथिंग लाइक दैट तो समहाउ हम लोग ने इंडल्ज नहीं किया एटलीस्ट मेरे घर पे एंड लुकिंग बैक आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली फेल्ट वॉट हर्ड मेंटेलिटी वॉज एज इन यू जस्ट डू इट वेक अप शीपल बोलते हैं ना दिस वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल की वॉट हैपन्स वेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग द टेंडेंसी इज टू फॉलो दैट
बट वॉज दिस नॉट अ नेशनल फिनोमिनन
आई डोंट नो आई थिंक वी आर लिसनर्स वुड हैव टू हेल्प अस आउट हियर
No. I think it was restricted to. I mean, this particular incident was restricted to Mumbai suburbs or even Maharashtra. But I think occasionally I have heard such kind of things happening in different parts of India and also the world. I think once I heard a news about Jesus Christ drinking milk or water or bleeding or something.
Bleeding, like that. Yeah. Wo nun log in Kerala and all, there were some churches which I think they were in a desperate need of funds for repairing the steeple or something like that. And yeah, then I think they came up with this nonsense. Yeah. And then obviously, immediately you realize that next day the father is driving a sports car, you know.
And you know what? The next day there is this loony claiming that he is the one who actually orchestrated the whole miracle. There was this guy called Chandraswamy, if I'm not wrong, right? Mm. He was, I think, Narasimha Rao's right hand or something like that. So that guy claimed the next day that he is the one who made Ganpati drink milk all across the country, something like that. So and this is again market for these loonies, right? Some godmen now will have their own market saying, "Isne Ganpati ko doodh pilaya, matlab ye to great hai." Aisa bahut log uske pas jayega aisa.
Yeah. So staying on the same theme. I went back memory lane, and so this example was, like you rightly pointed at the end, that maybe somewhere someone had to gain something. But I am able to think about an incident right now, which was completely ridiculous, and absolutely no one had to gain anything out of it. So I think, I don't remember exactly what standard I was studying in, maybe fifth or sixth. We were playing cricket outside our housing, or basically in our housing society. There was some older uncle coming back from the office, and he said, "Abhi sab log ghar pe jao. Wo Vrindavan ke wahan pe teen mundiwadi chudal ghum rahi hai." So everybody was like, kya baat ho raha? Nahin, there is this witch or a ghost or apparition, something which has three heads. And she is very violent. Before she comes here, go back home. Did you guys hear this thing?
Yes. So I have this Teen Mundi especially used to hunt for children, right?
That
was the story. So Teen Mundi ka other version, school mein iske aage uska solution bhi tha. Matlab, people used to say that ghar ke bar Jai Shri Ram likho, Teen Mundi jayegi. Matlab, wo ghar knock bhi kiya. And she used to come around. उसका ऐसा मेरे स्कूल में एक लड़का उसका टाइम टेबल भी बताता था, मतलब कि 7 बजे एरिया में आती है, 7:30 तक तुम्हारे इधर आएगी, तो जल्दी जाओ. It was essentially, I think, a story which was cooked up to get children back home before its sunset.
Adi, there is a possibility you are confusing this with the load shedding timetable.
So wo ladka confident.
But iska ek aur, there is one more deterrent to the Teen Mundi Chudal. Ye eye contact mat karo karke bolta tha. Had foreign origins, because once you obviously get more educated about global affairs, you realize that this is how Medusa used to be handled. But somehow Teen Mundi Chudal ko bhi wo log ne क्योर दे दिया. सो
अरे और वो बहुत लोकल क्योर रहता है ना, तो अपन उसका लोकलाइज वर्जन भी निकाला. जैसा श्रीराम वाला बहुत लोकल था, एंड देयर वाज दिस क्रिश्चियन गाय इन माय क्लास, वो गोवन क्रिश्चियन था. तो अभी नाउ ही डजंट वांट टू फील लेफ्ट आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन ना, तो ही यूज्ड टू से कि मेरे घर के बाहर हम लोग क्रॉस लगाते हैं, उधर भी तीन मुंडी नहीं आती है. तो मतलब बहुत सेक्युलर हो गया ये फिनोमिनन पूरा उसमें से, कि
this
thing was like locality by locality, right? Because in Thane it was, अरे अभी वृंदावन में, फिर इधर वसंत विहार में साकेत, वो साकेत कॉम्प्लेक्स जाते जाते वो तीन मुंडी वाली चुड़ैल का हो जाएगा उधर, बहुत दूर था.
तीन मुंडी क्या है, बहुत टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी वो. मतलब उसको वो आज के जमाने में, इफ यू थिंक ऑफ इट, तीन मुंडी गई क्यों उसके बाद? अभी ट्रैफिक जैसा बढ़ गया ना, आई थिंक तीन मुंडी इट गॉट हर, मतलब इट बिकेम मोर डिफिकल्ट फॉर हर टू ट्रैवल अराउंड द सिटी, कि अभी कैसा जाएगी कैसा. सो आई वाज सो जॉबलेस कि मैं अभी थोड़ा सा रिसर्च किया तीन मुंडी का सबसे लेटेस्ट इंस्टेंस का. So the most recent report is in Panvel, like this is like 5-6 years back. So Teen Mundi abhi Navi Mumbai mein hai apparently. If listeners from Navi Mumbai can corroborate.
Yeah, basically place which is going to be developed or essentially underdeveloped. Teen Mundi wadi chudel
wahi pe. I think it's a good thing, right? Agar Teen Mundi chudel tera area mein aa gayi, matlab property price abhi double hone wala hai. Aisa, I mean, I think it should be actually seen as a good omen.
Real estate advice.
Haan, exactly. So people actually
Panvel mein khareedo. अभी उसको कम्यूट भी नहीं करने का है ना, अभी उबर लेगी तो अभी वो शी कैन नॉट गो ऑल अराउंड द सिटी अभी उबर लेके. आई थिंक उसको अभी पनवेल लोकली अभी नवी मुंबई उस फोकस कर रही है, वहां डेवलप हो जाने के बाद देन आई थिंक शी विल गो फर्दर.
देन आई थिंक तुम्हारा कामशेत एंड तुम्हारा द फर्दर हेड वो सब आएगा, पाताल गंगा वो सब आना है अभी.
वहां शी माइट बी कम्पीटिंग विद अदर फोर्सेस प्रोबेबली, उधर का वहां का लोकल प्लेयर भी कोई होगा वहां का. झुणका बाकर चुड़ैल, ठीक है. सो शी वुड नॉक एट योर डोर एंड आस्क यू फॉर भाकरी एंड प्याज, अगर तूने दिया नहीं तो तेरे को मार देगी वो.
Abhe, so did so tell me so you said you searched the internet for these things right now.
Yeah.
Did you find an instance of a person actually confessing that he or she has seen this particular phenomenon?
That typically happens in YouTube comments. I have never come across anyone with their own names suggesting that they have come across, but YouTube comments may anonymous kind of people, they are the ones who claim. But
I think I just want to kind of take this to another urban legend, because I want to carry forward what Mayuk's question. So there was this rumor in between, this was not too long ago, but basically aisa kuch hai ki there are a bunch of individuals who belong to some tribe and they are infamous for being thugs or thieves. And what they would do is basically wear a loincloth, cover themselves in grease or some highly slippery liquid or something of that sort. And they would try and burgle homes. And every time someone used to latch on to them, they couldn't grab hold of them. And that's how they used to escape. And they would jump roofs and then somehow escape, and no one was able to grab hold of them. And no one knew how true this was, and they were called monkey thieves. So, but the thing here is that someone I knew used to say this with so much conviction that he knew of someone who might have suffered, and the level of conviction was so hard that if you were a young impressionable person or someone who was basically paranoid, it was very easy to fool you. So this had a lot to do with how much conviction you have as an individual when you are narrating stories or basically giving a goalie. If you are not convinced about it, don't expect people to take you seriously.
And it is always someone's friend, right, Rahul? Who has
always someone's friend. It has not even happened to them. They're just saying that they think it might have happened to them because they are living in that same pin code of some sort, which is ridiculous. But this was another, I don't know, how familiar are you with this monkey thief story? Are you, or urban legend? Are you guys familiar with it?
So I have heard about monkey thief, but I did not know that it came out from this robbery thing, that there was actually people from a tribe who were looting people.
And he actually, I am not sure because I didn't spend time on all this nonsense. But the thing is that if you actually do some research, you realize it's not one urban legend. It's a combination, and they're trying to make the urban legend more credible and interesting. And फिर end में तो बहुत ही ज़्यादा dampener था. किसने तो बोला ये NCP election जीतने के लिए ये सब डर कर रहा है लोग.
कुछ भी.
मतलब I mean I am not really a fan of Sharad Pawar, but I thought this was a bit unfair.
You know what the urban legend of Monkey Man, what flagged off the whole thing. In Delhi, I think it was the it coincided with 24-hour news channels, especially Hindi news channels in the early 2000s.
To be even more specific, it's India TV. Maybe
it's India TV. So they had nothing else to do, and we may laugh at this, but I think India TV has a lot of viewers, right, in the Hindi heartland, and people who take them to be true just because they are a news channel on TV.
So Adi, is this something related to the Delhi Six movie plot? I mean, I haven't seen the movie, but
yes,
I heard.
Yes. It's a metaphorical take on the Monkey Man story.
Okay.
But But I think in Delhi, a lot of people actually claimed that they saw a real monkey. So this oil story is, I think, which is a follow-up of what happened. People tried to rationalize the whole monkey man incident in Delhi. They actually caught a monkey and put him in prison, if you remember. If you try hard enough, you'll find a news report in which they have a typical langur, which is on the streets of any city in India. They grabbed hold of one such langur and put him in a jail in Delhi. He was behind bars.
But I think that was a right response to this, because in many cases, you respond to ridiculousness with more ridiculousness. So if someone says that Ganpati doodh pira and you refute that, they will say ki are tu nastik and they'll get offended and there is a huge fight. You should actually go one step ahead and actually give Ganpati ko uska uski usi se paisa leke 5 liter doodh khareed ke barbaad kar lene. Oh, next time se aisa sa baat karega hi nahi wo.
2 liter khud rakh lene ka.
Haan, wohi.
Further
2 liter nahi, 5 liter rakhna. Kya far Ganpati to pee rahe
tu. Ganpati anyway 5 liter nahi pee raha tha. Tu ek cheez dekha kya hai? Ganpati udhar ek spoon hi le raha tha. तो गणपति भी काफी मतलब जेन्युइनली सोचा कि ऐसा ज्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एक स्पून पिएगा बस, उससे ज्यादा नहीं
पिएगा. नहीं, इट वाज मैटर ऑफ 500 लोग से एक एक स्पून लिया तो ऑटोमेटिकली 5 लीटर हो जाता है ना. आई थिंक इट वाज वेरी कंसिडरेट रूमर था वो. तंत्रस्वामी एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही वुड हैव रैंक्ड हाई ऑन IQ आई वुड से.
और तंत्रस्वामी का कोई कार्टेल के साथ, कोई दूध का कोई कार्टेल से पैसा लिया रहेगा डेफिनेटली. कि मतलब कोई डेयरी कंपनी वारणा और गोकुल और वो सारा कंपनी से ना वो पैसा बनाया रहेगा.
आई थिंक यू आर मेकिंग अ राइट पॉइंट आदि, बिकॉज़ दिस सेगमेंट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय, आई एम इन टॉक्स विद देम, बाय गोकुल एंड गोवर्धन, बिकॉज़ दे डिड अ रियली गुड जॉब प्रोवाइडिंग द एंटायर मुंबई एंड मुंबई सबअर्बन कम्युनिटी विद एंडलेस सप्लाई ऑफ मिल्क दैट वीक.
एंड लालबागचा राजा.
ओ यस.
Also, coming to this, did you believe in any of these stories? Like, where did you, in any corner of your mind, fear Teen Mundi?
No, I did not. But there is another story coming up, which I did believe in.
So, thank you for staying with us, friends. We are now moving on to the next segment. We took this break because, as Mayuk mentioned, the previous segment was sponsored by Gokul. This one is going to be sponsored by Govardhan Dairy. So, thank you to our sponsors. And we were talking about urban legends and myths and how it came about and the impact it had on our lives and how it influenced our thinking and asked us, you know, challenges to ask some questions. But I would like to share something with all of you, which is more in the realm of paranormal. So what we used to have in those days was something called as planchette. But obviously, once you educate yourself a bit more, you also know that as an Ouija board. Have you guys, Adi and Mayuk, have you, either of you, heard about that or any stories around that?
Yeah, I've heard of stories around it, but I've never been part of trying to experiment on it.
Mayuk?
Yeah, so I was basically being lied to by my cousins.
Mm-hmm.
Every time I asked them, yeah, we have done planchette. You know, it is very, very interesting, very scary. So, I was like, okay, let's do that again. I said, no, we cannot do it now. That board belongs to my friends and we only do it at certain time. We cannot do it now. So when I was a kid growing up, like every summer vacation, my cousins used to tell me that, and then we never basically did it. And I'm pretty sure they did not do it as well. It was just another goalie.
But I mean, speaking of this, there was one anecdote related to planchette which I actually believed, and then looking back, it was probably one of the things I used to laugh about even now. So one of my elder brother's friends, there is apparently a protocol or a way of working when it comes to calling or inviting some spirit. And that friend of my elder brother, he tried to invoke Gandhiji's spirit, but somehow the process went horribly wrong and he could not kind of relieve the spirit into the next world. And he basically got scared and he thought, okay, maybe this is just a bad dream. but let's ditch it. And then the next day onwards, every day he used to come back from school, which was in the afternoon. And while he was watching TV or, you know, in his room doing his homework, he used to listen to a walking stick being hit around the apartment. And that guy was like shit scared, because for him, it was that walking stick which used to be Gandhiji's, and you could just hear the sound. And it went on for a week. And then he got really scared and he confessed to his parents saying that he screwed up with planchet. And now if you listen to if you listen to it carefully, you can hear someone's walking stick being used in our home. But there's nothing happening. So they ended up having a priest do some havan of some sort. But and that's how they got really back to normal.
So did they actually...
कोई बुड्ढा ऊपर नहीं रहता था इसका क्या गारंटी था मतलब
देख वही मैं बोल रहा हूँ कि ये रैशनल नहीं ये अगेन स्टोरी है ये तो फिर देन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट एंड आई यूज्ड टू से कि यार ये प्लानचेट वैचेट करना नहीं चीज अल्लाह जान जोखिम में आ जाएगा बट बाद में मैं सोचता हूँ तो क्या रिडिकुलस स्टोरी है तो सोच ना इफ यू थिंक अबाउट इट मेरे को बोलते टाइम ही हंसने आ रहा है ये गांधी जी का स्पिरिट उसका घर पे यहाँ पे साला राहुल गांधी को कोई वोट नहीं दे रहा है और गांधी जी का स्पिरिट उसका अपार्टमेंट में टक 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 कर रहे हैं
मतलब वो बंदा क्रिएटिव भी नहीं था ना मतलब कि किसको गांधी जी को बुलाएगा अपन
मयूख लेकिन इसमें एक और मिथ था मालूम है क्या बोलता है कि जो लोग रियल लाइफ में ज्यादा पीसफुल था वो लोग प्लानचेट वर्जन वो लोग का उसका ऑपोजिट अल्टर ईगो आता था उसका करके
मतलब मरने के बाद
उसका उल्टा वर्जन आता था मतलब वो पीसफुल स्पिरिट नहीं आएगा क्योंकि
तो मतलब ये इसका फिर एक्चुअली उसको एक और प्लानचेट करके उसको गोडसे का स्पिरिट को बुलाना चाहिए
था सही है
काम तमाम फिर उसको वॉकिंग स्टिक और गनशॉट दोनों सुनाई देगा उसको
बट प्लानचेट का मल्टीपल स्टोरीज मेरे को भी किसी ने तो ऐसा गोली दिया है बट दे हैव आल्सो इन्वॉल्वड गांधी तो मेरे को मालूम नहीं गांधी बहुत पॉपुलर स्पिरिट है क्या प्लानचेट में
नहीं अभी पीपल डोंट वांट टू गेट पर्सनल ना लगा रहे मेरे को दादाजी को नहीं बुलाने का या फिर हिज फ्रेंड्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन कि दादाजी तेरा क्या करेगा लोग तेरा दादाजी को देख के इधर अभी
तो ऐसा रैंडमली किसको भी बुलाने का क्या मतलब ऐसा आइंस्टाइन को बुलाएगा तो क्या बात करेगा तेरे से फॉर इंस्टेंस वो आ गया समझ वो क्या बात करेगा गांधी जी रिलेट नहीं किया रहेगा उसके साथ
गांधी जी आएगा तो तू स्कूल में ऐसे लिख पाएगा ना मतलब
भाई आइंस्टाइन आएगा तो यू कैन कॉल हिम बिफोर अ फिजिक्स टेस्ट
एग्जाम वो ऐसा फिर तेरे को फॉलो करेगा था एग्जाम हॉल में बाजू में बैठ के उधर से आंसर बताएगा
वही और अगर आज का तारीख में अगर किसी को करना रहे तो समवन वुड हैव एक्चुअली क्रिएटेड एन ऐप कि चलो प्लानचेट करके तो एज पर ये तेरा
रिक्वायरमेंट रहेगा राहुल सो I don't exactly know about Planchet ka app, but there are app exists which detects electromagnetic waves near you. और बोलते हैं कि ये ghostbuster जैसा use करते हैं लोग।
वो Bluetooth speaker से आता रहेगा वो तेरा वो जो waves है।
हाँ कुछ तो रहेगा no idea मेरा phone में जगह नहीं है और कचरा डालने के लिए।
मेरे को कोई someone went to the extent of telling me कि तेरा जो स्पिरिट रहता है उसका मास रहता है वो मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंसान का स्पिरिट कुछ 30 ग्राम का रहता है और जानवर का स्पिरिट कुछ 10 ग्राम का रहता है दिस वन गाय हु एक्चुअली टोल्ड मी दिस अभी
उसके बट इज दिस लाइक जनरल सो इवन अभी तेरे को योकोजुना का भी स्पिरिट 30 ग्राम का रहेगा और गांधी जी का स्पिरिट भी 30 ग्राम
नहीं रहेगा ये क्वेश्चन में पूछा वो बोला स्पिरिट का डिफरेंट मास है वो यूनिफॉर्मली हर इंसान का सेम रहता है समझा तेरे को मतलब वो इट इज रिगार्डलेस ऑफ तेरा साइज क्या था when you died
hey, science to that science was thrown out of the window long time back before we started this podcast it was discounted
yes ne aur dusra ek cheez batao Planchet mein kuch aisa 1 rupaye ka coin kuch aisa rakhne ka rehta hai na
1 rupaye ka coin fir you can ask only yes no questions I mean if you have taken if you have done something so superhuman as invoking a spirit and bringing it in the living world to usko sirf yes no question kyu puchega you should ask actually a full on interview jaisa hona chahiye nahi
aur wo tera path leke jayega na idhar se udhar letters ke upar
nahi apne wo I think wo culture to culture vary karta hai I have seen in some foreign movies jahan pe it automatically goes to yes or no Yeah, fir I have seen movies in which there is like a series or like alphabets are listed on the board and it will go to one alphabet after the other.
हाँ दी एक्सपेक्टेशन इज दैट दी स्पिरिट हैज टू बी लिटरेट, तो वो थोड़ा बायस्ड प्लांचेट एक्सपेरिमेंट हो जाता है फिर
अपना अपना उधर
का. मेरा दादी को तूने अगर बोला के बोला है कि चलो तुम प्लांचेट में बताओ, तो फिर इफ शी इज नॉट एजुकेटेड तो फिर वो मैं दादी बेचारी कम्युनिकेट नहीं करेगी फिर.
और दूसरा कंबर सा मैं देखना, तू लंबा कॉन्वर्सेशन पूछा शेक्सपियर आ गया समझ, तो वो तेरे को प्रोज दे रहा है तो तेरे को बहुत टाइम लगेगा रे, वो बोर्ड में एक एक अल्फाबेट जाएगा, वो पूरा तेरा दो घंटा लगेगा.
स्पिरिट को सीरियसली लेगा नहीं, मतलब तू सोच रहा है पूरा एक्सरसाइज
बेसिकली
टाइपिंग.
It boils down to the person who is doing planchet, उसको कितना सुनने का है. उसको yes no से काम चल जाएगा, मतलब planchet board में yes no ही रहेगा.
उसका 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, उसको ज्यादा कुछ जानने का नहीं है, वो ऐसे ही उसका लेवल का भी समझ. सलमान भाई मर गया, वापस आया तो क्या कॉन्वर्सेशन करेगा तेरे साथ.
सलमान खान प्रॉब्लम इज दैट सलमान खान यस नो के आगे उसका दिमाग चलेगा भी नहीं ना,
चलेगा नहीं, तो उसके लिए वो दूसरा मॉडल सूट नहीं होता है. वो एकदम
महेश भट्ट को तो यस नो क्वेश्चन पूछेगा तो फिर भी वो जीआरई का पूरा वोकैब सेक्शन तेरे पे उल्टी पे करके मारेगा वो.
तो वो वर्बोस वर्जन है प्लांचेट का, डिपेंड्स ऑन ते किसको बुलाना चाहता है उसके.
ये ओइजा बोर्ड जब बेचते हैं उसका भी ऐसा वो एक लाइट वर्जन और एक फुल वर्जन ऐसा करके बेचना चाहिए वो लोग.
वो कौन बेचते रहे हो? That is also another thing
game. I'm interested
in. Where do you get it from?
You can get it in like any board game place, I think. Board games, online, some
middle. It is considered a mainstream board game.
क्या मालूम? मतलब
पता नहीं मेरे
को. Fun school.
Yeah, and I mean, what I know for sure is it is this thing is prominent across cultures. अपना सिर्फ इंडिया में नहीं, वो हर जगह पे करता है. बहुत ही
popular. I am pretty sure it's a Western thing जो हम लोग adopt किया है इंडिया में. I have a feeling कि वो वैसा है. It's come the other way around. क्योंकि अपने पास अपना खुद का और बहुत कुछ है. तो this I think हम लोग
ये काफी interesting लगा रहेगा. क्या रे आएगा spirit बात करेगा तो फिर लेते
हैं. मतलब ये ज़्यादा hands on है ना रे. मतलब दूसरे में क्या वो पोजेस हो जाता है. एंड प्लांचेट में कुछ ऐसा है ना, तू एग्जिट प्रोटोकॉल भी कुछ रहता है. इफ यू डू नॉट फॉलो दैट एग्जिट प्रोटोकॉल, वो उधर ही तेरे ऊपर ही तेरे अंदर आ जाएगा उसका आत्मा ऐसा कुछ.
नहीं अंदर नहीं, मतलब मैं वही तेरे को जो मैंने एनेक्डोट बताया उसमें, हाँ ही एग्जिट प्रोटोकॉल ही डिड नॉट फॉलो इट टू द टी, सो गांधी स्टेड बिहाइंड इन हिज अपार्टमेंट. सो
गांधी बोला लेगा बदला तेरे से.
तो ये कितना ये इट मेक्स मी थिंक ऑफ द इंटरनेट. मतलब बेसिकली अगर 50 जन ने साइमल्टेनियसली गांधी को बुलाया तो गांधी विल सेंड लिटिल पैकेट्स टू एवरी 50 पर्सन. क्या
पता नहीं गांधी का कॉपीज बनता रहेगा वो. देन इट बिकम्स आई थिंक अ पीयर टू पीयर थिंग ना, तो टॉरेंट जैसा चलेगा ऐसा. तो
अच्छा तो, ये इसका ऐप ही बनाना चाहिए. मतलब गांधी आज 10 बजे को लाइव रहने वाला है
स्ट्रीमिंग. ऐसा प्लांचेट का यूट्यूब रहेगा तो उसमें ऐसा लाइव स्ट्रीम ऐसा सबको एक साथ मिलेगा. तो तेरा क्वेश्चन तेरा यस नो तेरा टर्मिनल में रहेगा.
अच्छा
तो इसमें ऐसा मतलब अपेरिशंस का अपने यहाँ पे देर आर लाइक सो मेनी डिफरेंट वर्जन्स. मतलब द रीजन आई से दैट दिस इज अ वेस्टर्न इम्पोर्ट क्योंकि अपने इधर ऐसा लोकल दिस थिंग्स और ज्यादा रहता है. मतलब एकदम वो पॉइंट इन टाइम में रेलेवेंट देर आर गोस्ट स्टोरीज. तो एक बार मैं इधर ऐसा आरे कॉलोनी में आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम गोरेगांव. तो द ऑटो कम्स थ्रू आरे कॉलोनी, तो वो रात का टाइम में ना बहुत अंधेरा रहता है. तो वो ऑटो वाला वॉज लिसनिंग टू द एफएम रेडियो टाइम में, और वो हिमेश रेशमिया का गाना है ना एक बार आजा आजा.
ऑटो वाला वो ही तो सुनेगा वो.
तो वो गाना बज रहा था तो ही इंस्टेंटली फ्लिप्ड चैनल. सो बोला साहब आपको ये गाना सुनना है. बोला नहीं आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट.
नहीं होल्ड ऑन व्हाई डिड ही आस्क यू दैट क्वेश्चन. मेरे को पहला बात वो बता, व्हाई डिड ही आस्क कि सर आपको ये गाना आज ही को हिमेश रेशमिया का गाना सुनने के लिए क्यों पूछे.
नहीं वो मेरे को नहीं जानते ना रे. वो 10 मिनट का ऑटो राइड में ही डजंट वांट टू मेक मी अनहैप्पी.
अरे वो उस फ्लाइट में कैसा एंटरटेनमेंट पैक रहता है ना वैसा तू चेंज कर.
तो बदल के देन ही गेव मी एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई ही डजंट वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग. वो बोला साहब ये यहाँ का जो एरिया है आरे कॉलोनी में हिमेश का ये आजा आजा गाना बजा है, जिधर भी बजाता है ना वहां पे एक भूत है वो आ जाता है.
मतलब ये अच्छा ये जो भी निकाला ना यार दिस इज अ वेरी गुड र्यूमर. मतलब उसको हिमेश का गाना नहीं सुनने का था तो यू नो ही सर्च्ड फॉर द डार्क डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन. मतलब फियर कैसा बंद करेगा इन लोग ये गाना सुनने को, भूत आएगा इधर.
तो वो बहुत पॉपुलर गाना था ना, हर आदमी सुनता था। तो तू सोच कितना घर में भूत आके वो गाना साथ में बैठ के सुना रहेगा, और वो कैसा उसका म्यूजिकल इंटरेस्ट देखो भूत का, मतलब वो हिमेश का गाना के लिए स्पेसिफिकली आता है वो सुनने को। मतलब या तो ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उसको हिमेश का गाना बंद कराने के लिए आया हो, नहीं तो उसको बहुत जेन्यूनली अच्छा लगता है हिमेश का आवाज, तो इसके लिए आके बैठा हो। तो आई डोंट नो, बट मैं लेटर ऑन आई रियलाइज ये बहुत लेजिटिमेट रूमर है जो बहुत जगह से लोग स्प्रेड किया। तो जैसा मयूक एज यू से probably to shoo away people from listening to Himesh anymore.
Exactly. But it backfired and people thought ki booth ka interest bahut hai ye gaane mein karke.
Matlab ko booth ka interest hai. Bachcha log planchet leke baitha aur kuch ho nahi raha hai to Himesh ka gaana bajayega.
Gaana baja dega saath mein. Matlab more impact to lekin gaana
sure shot way of invoking ghosts.
But may not work if you are invoking like Mozart for instance. वो जाएगा उधर से, एम एस सुब्बलक्ष्मी को तू बुला रहा है और उधर साइड में तू अगर ये बजाया हिमेश तो तेरा चांसेस नीचे जाएगा। और भी
इसके लिए काम नहीं किया वो, आई थिंक इट हैड टू बी अ बेटर म्यूजिशियन। ओके सो आई मीन जस्ट लेट मी पुट इट आउट देयर कि आई एम एक्चुअली वेरी फैसिनेटेड बाय रियल बाय गोस्ट स्टोरीज टोल्ड बाय पीपल हु एक्चुअली बिलीव इट, एंड नॉट फॉर फन सेक, बट यू नो you come across people who will tell you stories about ghosts that probably their close relatives or they themselves have heard, and they truly believe in that. I am fascinated by those stories because it's not that I am believing the story. I like the passion by which with which the person is telling the story, and I like to hear such stories.
But so why do you think many of these stories work, Mayuk? Because one is it plays with your deepest emotion, as you said, which is fear. And
yeah, for me, yes, for me, I genuinely believe there is no ghost or apparitions or anything like that. But on the other hand, there is a person who believes because he or she thinks that something like that has happened to them. And, you know, it's like your core belief that cannot be changed. And when I come across this and a person is narrating the story to me with such conviction, I mean, I am not taking the story seriously, but I'm just taking the feeling seriously. Let's see, this person believes it. It could have happened, but I don't believe it. You know, it's like something that really interests me. So I am fascinated by the horror genre. It is a very hard theme to work around. You don't see a lot of good horror movies, but sometimes when they are out, rarely they are good, and I really like them. So continuing on the theme of horror, something that was really horrifying to me was in 1996, India lost the World Cup semi-final to Sri Lanka. That day itself was horrifying, but what followed was people saying ki Sanath Jayasurya ke bat mein spring hai. And we did not lose because of our incompetence. We lost because
they cheated.
But, or spring
but Mayu ko semifinal mein jabki Jaisurya zero pe out ho gaya tha, but fir bhi hum logon ko ye rumor dene ka tha bar, kyunki wo rest of the tournament
itna dur aaya hai, wo spring laga ke itna dur aaya wo
aaya wo ha
मतलब उसका बैट स्पंज का था क्या, वो मतलब स्प्रिंग कैसे काम करेगा?
बट उसके पिच का फिजिक्स तू सोचना, मतलब बैट में स्प्रिंग मतलब होता क्या है, मतलब बॉल उतना देर कांटेक्ट में रह के ऐसा टॉइंग करके मतलब एक लॉन्च देता है बैट में से, मतलब उसके तभी मैं भी बिलीव किया ठीक है, क्योंकि वी ऑल फेल्ट बैड कि हम लोग हार गया, तो अपने को कुछ ना कुछ वी वॉन्टेड समथिंग टू होल्ड ऑन टू कि अपना टीम बेटर है, ये स्प्रिंग के वजह से ही हुआ है ना, एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड कि वो स्प्रिंग है।
इट वेंट फर्दर कि ICC इन्वेस्टिगेट किया, उसका बैट आज खुद के अंदर से स्प्रिंग निकाला है और कल देख पेपर में आएगा वो।
बट वो स्प्रिंग
एंड दैट वाज द ओनली टाइम वी एक्चुअली रेड द न्यूज़पेपर सीरियसली।
कल अगला दिन पेपर में कामली का फोटो आया, वो रो रहा था करके।
रो रहा था नहीं, और वो तू सोच ना उसका फिजिक्स हम लोग के इतना अच्छा नहीं है, उसका रीजन तू सोच ना, तो हम लोग ये टाइप का ये चीज बिलीव करता था कि वो स्प्रिंग उतना फोर्स जनरेट किया, वो ऐसा कोई लॉन्चर जैसा था, वो बॉल को ऐसा से पिंग करता था बैट से वो वहां से।
आई थिंक दिस रूमर हैज टू बी स्टार्टेड बाय a person who was very deeply, deeply affected by the India's performance or Sri Lanka's good performance in मतलब कोई तो बहुत ही deeply involved होने होएगा उसने निकाला रहेगा ये rumor.
But my okay rumor ना this was reborn 2003 final के बाद वो spring अभी Ponting का bat में गया पद में और Ponting had a bat called Kahuna करके एक bat था उसके पास. So the newspaper article was कि उसका जो sticker है it was some carbon fiber का कोई sticker. तो आईसीसी रेगुलेशंस के हिसाब से यू कैन नॉट यूज कार्बन फाइबर एज अ मटेरियल ऑन योर बैट दैट इज ऑल इट सेड बट उसकी वजह से उसके बैट से कुछ फोर्स ज्यादा जनरेट होता है ऐसा कोई साइंस नहीं है उसके पीछे बट उसको भी लैच्ड ऑन बोला इसके वजह से वो मारा सेंचुरी वो दिन मतलब वो स्प्रिंग अभी कार्बन फाइबर हो गया और वो Ponting का बैट में चला गया
टेक्नोलॉजिकल
एडवांस ना अभी 90s में
व्हाट इज जस्ट स्टेइंग ऑन ऑस्ट्रेलियन टीम व्हाट इज ट्रू इज 2007 वर्ल्ड कप में गिलक्रिस्ट इन हिज ग्लव हैड अ हॉकी पक
डिफिकल्ट होगा बैट ग्रिप करना फॉर अ नॉर्मल
मतलब फॉर सम रीजन उसको अच्छा लग रहा था बट आई डोंट नो आईसीसी ये एक्स्ट्रा इक्विपमेंट अलाउ करता है कि नहीं मतलब नहीं किया भी रहेगा तो बंदे ने एक्सेप्ट किया और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का कोई हराने के लिए था नहीं वो वर्ल्ड कप में सो इट वॉज फाइन
हाँ दैट इज कम्प्लीटली फाइन बट लेकिन हम लोग कितना ज्यादा इन्वॉल्व था सोचना सो दिस इज हाउ एन अर्बन लेजेंड सेल्स
आई थिंक वन मोर अर्बन लेजेंड विच इज कनेक्टेड टू क्रिकेट इज अगर फ्राइडे को पाकिस्तान के साथ मैच है इंडिया का इंडिया हारता है करके
वो सब शारजा में स्पेशली
पता नहीं फ्राइडे को आई थिंक पाकिस्तान के साथ मैच रहा तो हार गया
लॉजिकल क्वेश्चन था अपना कैप्टन भी मुस्लिम था ठीक है उसका ओरिजिन ऐसा है कि फ्राइडे होलीडे है मुसलमान लोग का और संडे वो लोग का नहीं है संडे डजंट वर्क फॉर देम तो संडे खेलेगा तो अपन जीतेगा फ्राइडे खेलेगा तो वो लोग जीतेगा लेकिन अजरुद्दीन कैप्टन था अपना तो आई डोंट नो हाउ अल्लाह डिस्टिंग्विश्ड
तो संडे को इंडिया हार गया तो फिर अजरुद्दीन का गलती है वो
गलती है वो फ्राइडे हार सकता है अपन ठीक है तो समाओ अपन एक दिन जीता फ्राइडे को अपन मालूम है वो ढाका वाला फाइनल था वो आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे मेरे को याद नहीं है
एंड दैट ब्रोक द स्पेल आदि दैट्स द थिंग देयर इज ऑलवेज लाइक अ मीनिंगफुल कनेक्ट टू दैट
वो जयसूर्य वाला र्यूमर जिसने बनाया ना ये उसका एक्सक्यूज था कि इंडिया क्यों हारता है
हां और दूसरा देयर इज वन मोर सच वर्ल्ड कप रिलेटेड दिस थिंग 99 वर्ल्ड कप में हम लोग जिम्बाब्वे से हार गया इफ यू रिमेम्बर वो हेनरी ओलंगा ने 3 विकेट निकाला लास्ट में और लास्ट विकेट था वेंकटेश प्रसाद वी नीडेड सम 3 रन टू विन प्रसाद बोल्ड हो गया एज यूजुअल एंड ओलंगा हैड 5 विकेट्स और समथिंग अगला दिन रूमर ये फिर से ऐसा वो वेकेशन का टाइम था ना और काम धंधा नहीं लोगों को तो पब्लिक बोला वो नो बॉल था लास्ट बॉल अंपायर बाद में बोला वीडियो देखने के बाद बोला वो नो बॉल है आईसीसी ये मैच वापस खेलने वाला ठीक है वर्ल्ड कप के बीच में मैच फिर से खेलेगा वो लोग और हम लोग कन्विंस्ड है 3-4 दिन न्यूज़पेपर देख रहे कब है इंडिया जिम्बाब्वे वापस कभी होने वाला है एंड सैडली टू ब्रेक आवर हार्ट सो वापस हुआ ही नहीं मैच कभी
अरे ये ऐसा कुछ था क्या ये फिर से 2015 वर्ल्ड कप में हुआ क्या कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल्स इंडिया हार गया एंड देन देवर लाइक देयर वाज सम प्रॉब्लम विद करप्शन एंड दिस मैच इज गोइंग टू बी प्लेड अगेन
वो उल्टा तू गलत मैच बोल रहा है वो बांग्लादेशी लोग के लिए इंडिया बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल वाज नेवर अ लेजिटिमेट रिजल्ट वो लोग बोला
अच्छा
बांग्लादेशी लोग बोला वो सी रोहित शर्मा गॉट आउट रोहित शर्मा वॉज इन हिज 90s सो द बांग्लादेशीज बिलीव इफ दैट नो बॉल वॉज नॉट गिवन इंडिया वुड हैव लॉस्ट दैट मैच एंड बांग्लादेश वुड हैव थ्रैश्ड अस इन दैट गेम और वो लोग ये रूमर स्प्रेड किया कि वो मैच आईसीसी प्रोब कर रहा है अंपायर पैसा खाया एंड सो ऑन
नहीं मतलब तू देखना आई मीन टू पुट थिंग्स इन टू पर्सपेक्टिव व्हाट वी यूज्ड टू डू एज स्कूल किड्स बांग्लादेश आज कर रहा है
और बड़ा लोग कर रहा है
वही मतलब तू सोच ना आई थिंक दैट दैट्स फूड फॉर थॉट फॉर
दैट इज वेरी
बांग्लादेशी लिसनर एंड यू आर लिसनिंग टू अस आई थिंक yeah, I mean, please continue listening to us. But yeah, I mean, please, our viewpoint won't change.
Please share the link on Bangla Cricket Forum.
But there is one common, there's one commonality between India of the 90s and Bangladesh team of today. You know what? We were not exceptionally good teams. We were mediocre teams who used to believe we are exceptional team. So which is why these kind of rumors used to stick with the fans.
I thought you were going to say match fixing.
Mohammad Ashraful, please go and research. So welcome back to the final segment of this podcast. So we began with how we started hearing about all these stories, starting from our school days, and then some of these urban legends which stuck to us from school. Some of them we listened to these stories while traveling in train. But what are the origins and what are the nodes of these stories spreading? Where did these goalies evolve from? So we all had that one friend in school, right, while growing up, who used to claim that he has something superior to you in terms of gaming equipment. He has all the stories in the world. He's the one whose friends have seen ghosts. And do either of you have any stories of such kind growing up? Did you have a friend like this?
Yeah, so I had one. In fact, both you and me, Adi, we had one guy who owned a wolf.
Okay. Yes.
So I think you know that person better than I do. You had the misfortune of being in his class, I guess. So I don't think we'll give out their names on the podcast. Yeah. But essentially, there were two fellows. We named one Goli. So his name is Goli, and his best friend we named him Banduk. So we have Banduk and Goli. These were the two people in college.
And how did these names come from? There is another interesting story. So the Banduk is usually the one triggering the goalie to come up with an innovative story. So he sets up the whole stage for goalie to then fire.
He's the opening act.
He's the opening act, and he would lay the platform with some random context, right?
So he just मालूम है क्या गोली के साथ ऐसा हुआ था अरे गोली वो बता ना उनको करके and then he would step in
and then he would just launch. But before I get to goli, I had a school friend of mine, and this guy was exceptionally good at this. So we didn't know he was a goli. The irony is now I know that he is one among the goalies in this world. But his stories would be like this. So he claimed that his brother worked with NASA, and he has all top secrets of how to get from Mumbai to New York without getting onto a ship or a plane. Okay, so his story was, if we keep digging in Mumbai.
Let me get it straight. So his brother was working for NASA.
NASA.
But not the space division, but the supply chain division.
Supply chain division. So
not even supply chain, logistics division.
Logistics, yeah.
Logistics, okay.
So uska story aisa tha ki idhar school ka ground mein apan khadda khodega. To 2-3 kilometer ke baad tu ek tunnel aayega, udhar se seedha New York pahunchta hai.
मतलब ये basically BMC ने ये seriously लिया रहेगा इसने.
लिया रहेगा. और वो पूरा जगह में वो रास्ता ढूंढ रहा था न्यूयॉर्क जाने का BMC. और वो ऐसा रोज गोली देता था. अभी उसका दूसरा एक आइडिया कैसा था कि इफ यू से समथिंग, अब बोल कि मैं रेस्नी कैलिडे पढ़ रहा है, तो वो तेरे को आके बोलेगा अरे ये बुक मत पढ़, ये फालतू है, मैंने तो ऐसा 4 बुक पढ़ लिया है. मतलब तू उसके आगे वन अपमैनशिप रहता है ना, उसका एक अलग लेवल था. ही ऑलवेज विल हैव द लास्ट वर्ड.
तो मतलब बोलने का ही है कुछ भी, लेकिन यू हैव टू से समथिंग.
ही हैज टू से समथिंग अबाउट इट. उसका ऐसा बहुत सारा स्टोरीज. अभी स्कूल में उसका एक घड़ी था एक बार गलती से, तो घड़ी एक स्पेसशिप वाला ऐसा कोई स्पेस स्टेशन का शेप का घड़ी था. तो देयर माइट बी एन आयोटा ऑफ ट्रूथ टू द फैक्ट कि किसी का नासा से कोई एसोसिएशन है, या फिर नासा गया रहेगा, मर्चेंडाइज खरीदा रहेगा उसने. ठीक है, तो भाई साहब बोली दे रहे सुवेनियर शॉप से, तो वो मर्चेंडाइज दिया है इसको, और उसने शायद इसको बचपन में गोली दिया रहेगा कि मैं काम करता था. आई डोंट नो ओरिजिन क्या है. तो उसको पूछा, अरे उसका नाम गोली नंबर 1 रखते हैं. तो उसने बोला कि ये मेरा भाई है, वो नासा में काम करता है. एंड फिर दैट बिगेन अ सीरीज ऑफ गोलीज जो नासा से एसोसिएटेड है. अभी आई डोंट नो ये गड्ढा खोद के न्यूयॉर्क पहुंचने का नासा से क्या लेना देना है, लेकिन मैं बिलीव किया तभी. वो स्कूल में ऐसा नेशनल एंथम के पहले सब ऐसा बकवास करता था, और हम लोग सुनता था ऐसा उसका.
हम लोग का आई थिंक नीदर ऑफ यू हैव डन एन एमबीए, बट आई हैव डन एन आई हैव एन एमबीए डिग्री. तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग विद पीपल हु यूज्ड टू फैफ स्टैटिस्टिक्स. मतलब स्टैटिस्टिक्स गोली मरता था वो लोग. अरे तेरे को मालूम है क्या, मुकेश अंबानी 10% ऑफ स्टॉक मार्केट कंट्रोल करता है. फिर बाद में क्या 30% ऑफ अपना जीडीपी ब्लैक मनी है, ऐसा कुछ बेसिस नहीं, कुछ नहीं, बट दे विल वेरी कॉन्फिडेंटली परेड अ नंबर अलोंग विद द हॉर्सशिट दैट दे आर सेइंग.
मतलब परसेंटेज में बोलना इजी होता है ना, मतलब 1 to 100 के बीच में कुछ भी लगाने का है अपने को.
एंड आई थिंक उसमें आई थिंक दे हैड अ टैक्टिक हियर. वन इज दैट ए इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग द गोली, एंड बी दे फील और दे थिंक दैट इफ आई हैव अ नंबर एसोसिएटेड विद द गोली उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा होता है. सो कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी वॉज द की टू देयर सक्सेस. तो
ग्रेविटी ज्यादा है ना,
ग्रेविटी ज्यादा है मतलब. बट लुक एट आई मीन ये आफ्टर पॉइंट इट स्टॉप्स बिकमिंग ह्यूमरस, बट द पॉइंट इज की क्या बोल रहा है वो लोग, सोच की स्टेटिस्टिक्स पेक दिया वो लोग ने.
No, this is ridiculous. I mean, people who have this inclination of lying on your face. I mean, these kind of lies do not really hurt you. You know, they are not meant for, and they are not even white lies. So there is a gray area between a complete lie and a white lie where this stands, right? Ki
teen mundis are different, basically.
तीन मुंडी इज बॉर्डरिंग ऑन इट्स इन द फ्रिंज. ठीक है, व्हाट आई मीन एंड आई थिंक मीडियम आल्सो मैटर्स, बिकॉज उस टाइम पे व्हेन इंटरनेट वाज न्यू टू ऑल ऑफ अस एंड वी यूज्ड टू प्रैक्टिकली बिलीव एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, विच ऑब्वियसली लुकिंग बैक इज नॉट द थिंग टू डू. सो किड्स, इफ यू आर लिस्निंग टू दिस पॉडकास्ट, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट.
डोंट बिलीव मोस्ट थिंग्स.
तो तभी ऐसा सब आता था, गोली आता था कि मकर संक्रांति के दिन माइक्रोसॉफ्ट बंद रहता है बिकॉज हिंदू लोग को कुछ तो करना है. फिर बाद में क्या नासा में 40% साइंटिस्ट इंडियन लोग है. और ये है ना पब्लिक, तुम लोग बिलीव नहीं करेगा हाउ फार इट वेंट.
वो
तेरा ISS में इमेज कैप्चर हो रहा है उसका, मतलब तू समझ रहा
है. एडी, वी आई एंड राहुल हैड दिस डिस्कशन लास्ट नाइट वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज. I mean, if you go back and search the internet and get that image, you will notice that the Himalayan mountain range is colored green at night. One, okay. Two, Sri Lanka is also as bright as Mumbai. Now, Sri Lanka mein kaun Diwali mana raha hai udhar?
Oh, uska, us din uska the morning day hai, bichara.
Haan, jala diya tha na us din kuch to. Us din
usko. Match raha hai wo log udhar. रावण को मार दिया करके. हाँ,
नहीं रिडिकुलस. तो हाँ, तो
नेशनल एंथम का भी तू सोच, यूनेस्को को काम धंधा नहीं, वो बोला नाइजीरिया गाना गा तू, तू अफगानिस्तान तेरा गाना गा, और फिर बोला अरे सबसे बेस्ट जन गण मन है. मतलब वो लोग बोल दिया
यूनेस्को एंथम का पैनल में कौन रहेगा, मैं वो सोच रहा था. मैं मतलब हु वुड बी पैनल ऑफ जजिंग नेशनल एंथम्स.
वो यूनेस्को का इंडियाज गॉट टैलेंट है. मतलब
वो आई मीन एंड आई वंडर व्हेन दे आर जजिंग दीस थिंग्स डू दे एक्चुअली स्टैंड अप. उन लोग खड़ा रह के सुनता है क्या सब नेचुरल एंथम
पूरा दिन 200 देश का
वन आर्म ओवर द हार्ट और शोल्डर.
सोचना उसको सारा कंट्री का जो एटिकेट है एंथम वाला वो सब सीखना पड़ेगा उसको, एक एक देश का क्या क्या है करके.
नहीं नहीं, ऐसा गोली एंड दिस एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इज बिलीव्ड बाय एवरी बंगाली कि समवन वोटेड बंगाली टू बी द सेकंड स्वीटेस्ट लैंग्वेज. मतलब रसगुल्ला मिलते तो स्वीट हो गया क्या वो
और ये क्वालिटेटिव है ना ये सब कुछ
कि पर्शियन
नहीं, नंबर वन फ्रेंच कुछ तो था, फ्रेंच या चाइनीज कुछ तो था, मालूम नहीं मेरे को.
ऑलवेज अ यूरोपियन लैंग्वेज क्योंकि ठीक है तो तू ज्यादा बिलीव करेगा ना.
सेकंड हुआ तो मतलब थोड़ा क्रेडिबिलिटी आता ना, सेकंड मोस्ट स्वीटेस्ट लैंग्वेज. तो स्वीटेस्ट क्या मतलब,
मतलब अभी जिसने वो गोली बनाया कितना सिनिस्टर माइंडसेट के साथ बनाया. फर्स्ट मत बोल, सेकंड बोल, ज्यादा बिलीव हो.
देयर माइट बी सम सेमब्लेंस ऑफ ट्रूथ बिकॉज ऐसा ज्यादा खाएगा तो क्या, ज्यादा सुनेगा तो डायबिटीज होगा क्या तुम लोगों को?
डायबिटीज होगा. मतलब ये तो जो ग्रे एरिया वाला जो बोला ना कि देन यू हैव व्हाइट लाइज और ये ग्रे एरिया वाला, यही एरिया में ये लोग खेलता है. Basically.
नहीं, बट वही मैं बोल रहा ना, व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू से द लास्ट टाइम आई रेस्ड दिस और गॉट इनटू दिस डिस्कशन वाज दैट द फर्स्ट उस जमाने में एज इन द 90s इट वाज लोकल ट्रेन में कम्यूट करने वाला अंकल लोग जो अपना डैड का दोस्त लोग, फिर ये मम्मी का ऑफिस में जो बैठता है द कोलीग लोग, एंड देन अपना स्कूल में बच्चा लोग. सो इट वॉज अ वेरी पर्सन ड्रिवन थिंग. सो इफ यू आर अ स्टूडियस किड एंड इफ यू गेव अ गोली यू विल बिलीव इट. इफ यू आर अ निकम्मा एंड यू गिव गिव यू अ गोली तेरे को पब्लिक गाली देगा. तो वो फार्स के डायरेक्शन में चले जाता है. देन विथ टाइम इंटरनेट टुक ओवर. तो इंटरनेट में तुम्हारा ये नेशनल एंथम, यूएन, फिर बाद में तुम्हारा नासा में आधा लोग इंडियन है, तो ये सब नॉनसेंस है ना. इंटरनेट में आने के बाद आई थिंक द गोली गिवर वॉज गिवन अ मास्क. सो देन दे बिकेम इवन मोर ब्रूटल. एंड टूडे वी हैव व्हाट्सएप. व्हाट्सएप में क्या हो गया कि समवेयर द परवर्जन है स्क्रिप्ट इन द ये रूमर्स, बिकॉज गोली गोली नहीं रहा है अभी, वो थोड़ा फेक न्यूज की तरफ जाना चालू हो गया. वो
जो डेंजरस टेरिटरी में,
डेंजरस टेरिटरी में जा रहा है. इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव. इट इज बिकमिंग अ बिट हेटफुल. तो जैसा अभी इवन मीडिया हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन इट, इफ आई पुट इट दैट वे. जैसे
एक तो हो गया मीडिया, एंड द अदर थिंग इज पीपल टेंड टू अलाइन विथ थॉट्स दैट दे देमसेल्फ बिलीव इन. मतलब यू नो एवरीवन हैज देयर इंट्रिंसिक बायस.
And this internet has this way of doing it to you where it will sell more of what you believe into.
Yeah, let's say it's like, a lot of us are a fan of this movie called Gunda. So five of us sit together and discuss about Gunda. We'll eventually conclude that the Gunda is the best movie ever made. But that is our viewpoint. And, you know, if we share this with all our logical reasonings to on WhatsApp, people who tend to align with this thought will actually believe that.
And share more of it.
Yeah, and so that eventually we do not believe that Gunda is the best movie ever made. It's just the analysis brings out that
thought. Speak for yourself.
Yeah, exactly. No. My favorite movie is Hum Saath Saath Hai, and according to me, it is a coming of age classic of Saif Ali Khan's character named Vinod.
Vinod.
एक और एग्जाम्पल जो मैं देने वाला था, विच वॉज टू डू विद हाउ व्हाट्सएप इज बींग यूज एज अ मीडियम हैज बिकम मोर डेंजरस टूडे, इज आई थिंक अ वेरी इनोक्यूअस एग्जाम्पल, बट हाउ आर पीपल हैव ऑल्सो हाउ आर पीपल आर बींग ड्रॉन इन टू इट इज मेडिकल एडवाइस. जैसे अभी नींबू का पानी पियो, कुछ भी हो, तुम्हारा एड्स कैंसर भी तुम्हारा नींबू का पानी पीने से या हल्दी का दूध पीने से ठीक हो जाएगा बोलते हैं.
तो हल्दी से सब्जी धोने का तो तेरा सारा बीमारी ठीक हो जाएगा. निपा वायरस.
तो अरे तो सी आई कैन गिव यू अ गुड रीजन कि ये सब कहां से चालू होता है. सो बेसिकली देयर आर लेजिटिमेट साइंटिफिक स्टडीज व्हिच इवैल्यूएट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कुर्क्यूमिन. तो ये कुर्क्यूमिन जो होता है वो टर्मरिक में मिलता है,
एक्टिव कंपाउंड.
हाँ, तो दैट कंपाउंड हैज शोन सम प्रॉपर्टीज ऑफ किलिंग सम कैंसरस सेल्स समवेयर इन सम कॉन्टेक्स्ट.
एंड सम एंटी अल्जाइमर प्रॉपर्टी.
हाँ, कुछ तो छोटा कॉन्टेक्स्ट में स्टडीज हुआ है. तो कोई किसी ने तो रिपोर्ट किया रहेगा और चालू हो गया, हल्दी से कुछ भी करो ठीक हो जाएगा.
और उसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, वो साइंटिफिक जो पब्लिकेशन है उसका भी लेजिटिमेसी किसी को पता नहीं. ठीक है, वो एक पूरा यूनिवर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में वो एक टट्टी पेपर हो सकता है, लेकिन लोग उठा लेते हैं उसको.
पीकिंग यूनिवर्सिटी.
या आई मीन बेसिकली थॉट्स दैट यू अलाइन विद. तुम लोग निकाल के उसको कुछ भी बनाएगा उसको.
नहीं, बट द थिंग इज दैट पीपल हैव स्टार्टेड शेयरिंग. आई मीन एस्पेशली द एल्डर जनरेशन, व्हाट हाउ वी ट्रीटेड इंटरनेट व्हेन इट वाज न्यू टू अस एज किड्स. द एल्डर जनरेशन इज दैट इज आवर पेरेंट्स का जनरेशन, दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग इंटरनेट द सेम वे. एंड बाई इंटरनेट आई मीन व्हाट्सएप. कुछ भी हो, गर्म पानी पियो, फिर ये आसन करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड देन नाउ दैट इज स्प्रेडिंग इनटू सम पॉलिटिकल बिलीव्स आल्सो. मतलब कुछ भी हुआ आयुर्वेद में ये हुआ था, कुछ भी हुआ मोदी ने किया है, फिर मुसलमान लोग का तो खैर उन लोग का क्या बिलीव सिस्टम और या क्रिश्चियंस का क्या है, वो इट्स वेरी रिलीजन स्पेसिफिक एज वेल, सो वी वुड लाइक टू इनवाइट थॉट्स फ्रॉम अदर रिलीजियंस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज व्हाट यूज्ड टू बी मोर लाइटर टॉपिक ऑफ बीइंग अ गोली और फार्शियल हैज नाउ अज्यूम्ड प्रोपोर्शंस ऑफ प्रोपेगेंडा एंड and is rumor now being used as a rumor. It's much more vicious than that, I believe. It's a lot to do with your political belief system, and I think somewhere the mediums have to take a responsibility. And I think while the topic started off on a very light note, now I think with fake news and that phenomena gaining more power as a counter propaganda tool, I think there has to be some revolution, because otherwise there is no way of saying what's right and what's wrong and what's true and what's false, and that is unfortunately the tragedy today.
And, from my point of view, the consumer of this news has to also think for himself or herself, right? Because here right now you have genuinely educated people who have the capability of thinking logically are forwarding such things without knowing or reading that. Like, just a week back, I am part of a closed Facebook group that mainly belongs to scientists of Indian origin, who are either graduate students, scientists, professors, or postdocs outside India mainly, and a lot of them from India. So you have this senior person there sharing a news link saying now NRIs can vote. So if you just go in that link and it says, you know, you can actually register from outside, but if you have to vote, you have to be at the election booth. So nothing like that happened. I mean, we cannot vote from outside the country, but the headline said otherwise. The content was different, and this fairly educated person with an advanced degree shared this without no responsibility. So what it tells me is, I mean, as a consumer, you have to be responsible, because you are going to get garbage on your way, right?
And it's about how easy it has become to share these things, right? You don't have to go out of your comfort zone. You can just do it from the comfort of your couch at home. And you really don't care about the consequences when people do this. And a lot of these quick fixes, Mayuk, and as Rahul said, turmeric, ginger, you just look at these quick fixes. They are not something which you have to spend a lot on. You just go do it at home, and it makes it easy for you to consume this news, right? He wouldn't go and tell you about a fruit which doesn't exist in India in that WhatsApp forward. He'll always tell you about something which you've always been using at home.
And I mean, I'm not trying to discredit this. All that I'm saying is that there has to be some sort of discretion that you as a consumer have to show, and which is, I'm echoing what Mayuk just said, is that there will be a lot of spam and garbage which will be coming your way. You have to be a bit objective and educate yourself in terms of understanding, I mean, the background that Mayuk gave in terms of curcumin, that you need to have some sort of endeavor to discover this for yourself, and be a bit critical in the process. Having faith is good, yes, but at the same time, don't believe everything that comes your way, because it can be harmful and you are a lot likely to be exploited in the process. And given in today's time and age, I think there is a lot more negativity than we had back then. So we have to be a lot more careful and show more responsibility is what I would like to think.
Yes, and to add to your point, Rahul, like you briefly touched upon the statistical goalie, right? This is how science is used in a lot of the goalie circles. So when someone claims that this is proven by science, that phrase in itself has zero meaning to it. When I say something is proven by science, it has zero meaning, because I am not giving you a citation of those 100 articles out there which you have claimed something. So people just use this word science as a way of justifying their claims, right? So one should be wary of these people who claim science is what is on their side. And I think we began on a very light note, and we have ended on a very, very, very gloomy note. And I just end it with something which Mayuk briefly touched upon, our goalie friend. And our goalie friend was a mix of all statistical and white
anecdotal
legs, anecdotal goalies. So one of his goalies from his side was that he has 53,000 tazos with him. Those things which you would get with a lace packet.
Lace chips.
And by that time, I mean, we were in college, we had forgotten about tazos. He brought it out. Oh, mereko yaad hai tazo.
And to add to it, his number was, and he told us about the frequency with which he used to buy Lays. And for some goddamn reason, we went back and looked at the calculations. It used to roughly work around 50,000 tazos at some point. And that is the amount of work he used to put in behind his goalie, right? So that there is an element.
He added realistic elements very well. So, for example, there was some kind of a small riot or something happening in Mumbai. And there were police forces out, you know, doing their bandobast and stuff like that. So, he was like, "Arre, main Mankhut se aa raha tha, wahan pe tear gas dala." I mean, I was in the middle of tear gas.
और उसमें सेम स्टोरी में उसका ट्रेन में दूसरे आदमी के साथ बात करते वक्त कोई चॉपर लेके उसको मारने को आया समथिंग लाइक दिस ठीक है एंड गोली क्योंकि दोज डेज ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ वेट ट्रेनिंग और समथिंग तो वो बोलता था कि अरे मेरा हाथ रखा वो कोई सामने नहीं आ पाया मैं 5 लोग को बचाया मतलब उसका जो एलिमेंट्स है ना मतलब वो सुपर ह्यूमन statistical goalie, sara genre touch karke wo tere ko goalie deta tha.
And he actually had a dog. So you cannot dispute that fact. He had a German Shepherd. And he was like, "Are, he is not German Shepherd. He is actually a wolf."
Aur wo Airoli ka jungle se leke aaya wo wolf ko.
Airoli mein kidhar jungle hai?
That is the story. Airoli ka paas jungle hai. Udher mere ko ye wolf mila. Main isko leke aaya. And then he has crocodile stories. Wo ek bar IIT gaya tha. Lake ke paas ek ladka chal raha tha. Book padhte padhte.
No, book padhte padhte kyunki wo IIT tha.
IIT tha. Theek hai. Wo stereotype ko bhi he has to play along with the stereotypes. To उधर से एक क्रोकोडाइल पानी से आया उसको समझा भी नहीं उसको खा लिया और ये सब कुछ गोली के सामने हुआ ठीक है
न्यूज़पेपर में आया ही नहीं
न्यूज़पेपर में नहीं आया मतलब गोली का स्टोरीज गोली के पास ही रहता था और वो बोलेगा किसी को बता मत ठीक है ये उसका डिस्क्लेमर तेरे को दोनों साइड से तेरे को एक वार्निंग मिलेगा ये किसी को मत बता ये सिर्फ मेरे को मालूम है
नो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस मतलब वही शेयर कर पाएगा सिर्फ
if we have listeners in the US who are stocking up dry food, having arms and ammunition and building a bunker, we have your counterpart in India as well. So you're not alone.
Exactly. And to just end it, since you mentioned the US, the last of goalies goalie I have heard is he claimed that he lunched with Hulk Hogan once and Hulk Hogan was visiting his home. And he shared a photo on, I think, either Facebook or Orkut back in the day to substantiate his claims. And when we analyzed it further, that photo looked like someone who looked like Hulk Hogan but was definitely not Hulk Hogan.
It was Alok Nath wearing a mustache.
Mustache.
And, yeah. So on that note, I guess... we should remind our listeners that they can communicate with us. In fact, we are looking forward to hearing back from them on Twitter at SeatFourth. And our email ID is thefourthseatpodcast@gmail.com. And yes, Addy, go ahead and add your last bit of comments.
So, and we'd like to hear a lot in terms of critique from you guys also. On our email and on Twitter. Yes.
We accept constructive criticism and hate mails both.
And suggestions on future topics which we would take up.
Yes, that too. We would actually encourage you to reach out to us.
And on that note, let's wrap this episode up. Thanks for having you guys here.
Thank you very much.
Thanks for listening.
A fourth seat, Bajuatna.